आगे सबक देखिए, बाबुन फिल औलिया इवल अकफा वयन आकिदु निकाहुल हुर्रतिल आकिलतिल बालिगति बिरिजाहा व इल्लम याकिद अलैहा वलियुन बिकरन कानत औ सय्यिबा عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينعقد إلا بولي وعند محمد رحمه الله ينعقد موقوفا وقال مالك وشافعي رحمهما الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا. गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि निकाह मुता और निकाह मुअक्कत ये बातिल है भाई। निकाह मुता मैंने बतलाया कि इसके अंदर निकाह या तजव्वुज के अल्फाज नहीं होते बल्कि तमत्तु के अल्फाज होंगे भाई। तमत्तु का माना है फायदा उठाना। तो कोई शख्स किसी औरत से कहता है अतमत्तउ बिकी कदा मुद्दतम बिकदा मिनल माली, कि मैं तुझसे इतने माल के बदले इतनी मुद्दत तक नफा उठाऊंगा। तो देखो इसके अंदर गवाहों की भी शर्त नहीं होती और नीज मुद्दत मुकरर होती है। तो ये निकाह मुता बातिल है भाई। और साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक ये जायज है, लेकिन मैंने बताया कि यहां साहिब हिदाया से तसामुह हुआ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की तरफ ये निस्बत सही नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक भी मुता हराम है, हत्ता कि उन्होंने अपनी हदीस की मशहूर किताब मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर बाकायदा वो हदीस दर्ज फरमाई है, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यौम खैबर के दिन मुतातुन निकाह से मना फरमाया था। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह की आदत यह है कि वो अपनी किताब के अंदर उन्हीं अहादीस को जिक्र फरमाते हैं जो उनका मजहब होता है, जो उनके नजदीक कवी और राजिह होती हैं। तो मालूम हुआ उनका यही मजहब है। बल्कि मालिकिया की और मोतबर किताबें भी देखें तो उससे भी पता चलता है कि मालिकिया के हां ये मुता जो है हराम है भाई। तो यहां साहिब हिदाया से तसामुह हुआ। और वजह ये तसामुह होने की वजह शायद ये है कि ये शिया के यहां मुता जायज है और उन्होंने इसकी बड़ी फजीलतें बयान की हैं भाई। और उन्होंने इब्तिदा के अंदर जिनसे मुता के जवाज का इशारा मिलता था उस किस्म की रिवायात उन्होंने खूब फैलाई भाई, खूब उनकी इशाअत की। यहां तक कि बड़े बड़े उलमा भी बाज़ औक़ात उससे गलती खा गए, जैसे साहिब हिदाया यहां पर। लेकिन मैंने बताया बेहतर यह है कि यूं न कहा जाए कि साहिब हिदाया से यहां तसामुह हुआ है। वजह यह कि साहिब हिदाया बहुत बड़े फकीह हैं भाई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मजहब उन पर कैसे पोशीदा रह सकता था भाई। तो यूं कहा जाए कि किसी लिखने वाले से गलती हुई, या तो गलती हुई या किसी ने जानबूझकर यहां तब्दीली की, क्योंकि पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। तो शायद कोई शिया वगैरह हो जिसने ये तब्दीली कर दी और वही नुस्खा फिर आगे फैल गया भाई। तो बहरहाल तमाम उलमा ने, तमाम शारहीन वगैरह ने तसरीह की है कि इमाम मालिक की तरफ ये मुता के जवाज की निस्बत सही नहीं है भाई। और मैंने तफसील बयान की थी कि इब्तिदा इस्लाम में मुता जायज था भाई, और फिर उसके बाद गज़वा खैबर के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुता को हराम करार दे दिया, उसे मना फरमा दिया। और फिर फतह मक्का के मौका पर फिर 3 दिन के लिए मुता की इजाजत दी गई, और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद अबदुल आबाद तक के लिए हमेशा के लिए इसको हराम करार दे दिया गया भाई। और सहाबा में से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं वो मुता के जवाज का फतवा देते थे, लेकिन वो जवाज भी आम अहवाल के अंदर नहीं बल्कि जरूरत शदीदा के मौका पर वो जवाज के कायल थे। कि मसलन कोई शख्स जो है कहीं दूर दराज इलाके में सफर पर चला गया और वहां उसका कोई जानने वाला नहीं है, तो वहां पर फिर वो मुता की गुंजाइश देते हैं जरूरत शदीदा की बिना पर कि किसी औरत से मुता कर लें कुछ मुद्दत के लिए। तो जब तक वो शख्स वहां रहता है तो तो वो औरत उसके घर की जरूरियात का ख्याल भी रखेगी और नीज उसके सामान वगैरह की देखभाल भी करेगी भाई। लेकिन बाद में हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी इससे रुजू फरमा लिया भाई और बाकायदा तौबा की अल्लाह के हुजूर। उलमा ने उनके अल्फाज भी जिक्र फरमाए हैं भाई। तो ये तो आम उलमा फरमाते हैं कि इब्तिदा इस्लाम में मुता की इजाजत थी, जबकि शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि ये जो मुता जिसकी शोहरत है ये तो इस्लाम में कभी भी जायज नहीं रहा भाई, ये मुता जिसमें गवाह भी नहीं होते भाई, तो ये तो इस्लाम में कभी भी ये जायज नहीं रहा। इसी तरह अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि ये जो मुता आजकल मशहूर है, ये जो शियों के यहां राइज है, ये तो इस्लाम के अंदर कभी भी जायज नहीं रहा कि बगैर निकाहों के जहां औरत मिले और वहां उसके साथ अतमत्ता बिकी के अल्फाज कह लें और बस ये मुता हो गया वो कुछ उजरत के बदले में थोड़ी सी देर के लिए, तो कहते हैं ये कभी भी शरीयत में जायज नहीं रहा। वो जो इस्लाम के अंदर भी शुरू के अंदर जो जवाज था और जो इजाजत दी गई थी उसमें भी गवाह होते थे भाई, और उसके अंदर वो शख्स कुछ मुद्दत के लिए निकाह करता था लेकिन मुद्दत को जिक्र नहीं करता था, बस दिल में छुपा करके, बस मैं तो थोड़े दिन के लिए यहां आया हूं तो थोड़े दिन के लिए निकाह कर रहा हूं, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा दिल के अंदर जो है नियत होती थी कुछ मुद्दत की, लफ्जों में भी जिक्र नहीं किया जाता था और गवाह भी होते थे तो आम निकाह की तरह होता था, लेकिन बस दिल के अंदर नियत थी कि ये मैं हमेशा के लिए निकाह, हमेशा के लिए मैं निकाह नहीं कर रहा। लेकिन बाद में फिर हुजूर अलैह सलाम ने इससे भी मना फरमा दिया, बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि निकाह मुअक्कत भी बातिल है। निकाह मुअक्कत में मैंने बतलाया कि इसमें निकाह और तजव्वुज के अल्फाज होते हैं और इसमें गवाह भी होते हैं, अलबत्ता इसके अंदर तहदीद वक्त होती है, कोई वक्त मुकर्रर किया जाता है कि 10 दिन के लिए या 6 माह के लिए या साल के लिए। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह जो है वो शुरूत फासिदा से फासिद नहीं होता, लिहाजा यहां पर यह शर्त फासिद जिक्र कर दी जो वक्त को जिक्र किया, तो यह शर्त फासिद है और निकाह सही है और यह अब निकाह मुअब्बद शुमार होगा। हम कहते हैं नहीं, ये निकाह के अंदर जब वक्त को जिक्र किया मालूम हुआ ये ईजाब और कबूल वो मुअब्बद कर ही नहीं रहे, ईजाब और कबूल ही तो ये निकाह के अरकान हैं, इन्हीं से तो निकाह बन रहा है, तो ये ईजाब और कबूल ही मुकय्यद हैं वक्त के साथ, लिहाजा इनको मुतलक करार नहीं दिया जा सकता कि निकाह मुअब्बद हो गया। भाई मुअब्बद कैसे हो गया, उन्होंने ये ईजाब और कबूल किया ही कुछ वक्त के लिए है तो ये मुअब्बद नहीं हो सकता भाई, बात समझ में आ गई। और हम कहते हैं कि ये शख्स जो है इसने वक्त को जिक्र किया तो मालूम हुआ ये निकाह कर ही नहीं रहा, मुता कर रहा है और मुता तो बिल इत्तेफाक बातिल है, लिहाजा ये निकाह मुअक्कत भी बातिल है भाई। और बाज उलमा ने जिक्र किया कि इसके अंदर अगर लंबी मुद्दत जिक्र कर दी जाए जो जिंदगी से भी ज्यादा हो तो फिर मुता सही हो जाएगा, मालूम हुआ वो मुअब्बद निकाह ही कर रहे हैं। लेकिन साहिब हिदाया ने बतलाया कि नहीं, जब वक्त जिक्र कर दिया तो पता चल गया ये मुता हो रहा है, लिहाजा वो जायज नहीं है, चाहे थोड़ी मुद्दत जिक्र करें चाहे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद मसाला जिक्र हुआ कि जिस शख्स ने दो औरतों से एक ही अकद के अंदर निकाह किया और फिर पता चला कि इनमें से एक औरत तो इस शख्स पर हराम है, यानी वो इसके लिए महल्ले निकाह ही नहीं है, मसलन वो इसकी रिजाई बहन है भाई, तो ये निकाह के बाद उसको पता चला तो क्या दूसरी का निकाह हो गया या नहीं, तो बताया कि हां भाई दूसरी का निकाह हो गया और ये जो महल्ले निकाह नहीं इसके साथ निकाह नहीं हुआ भाई, क्योंकि महल्ले निकाह ही नहीं है उसके लिए। तो हासिल कलाम ये कि दो औरतों से निकाह किया जाए और उनमें से एक हराम हो आदमी के लिए तो दूसरी के साथ निकाह हो जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में बैअ के अंदर अगर मबीए के साथ गैर मबीए को मिलाकर बेचा जाए तो इस सूरत में सारी बैअ ही बातिल होती है। ये नहीं कहा जाएगा कि मबीए के अंदर तो बैअ हो गई और दूसरे गैर मबीए में बैअ नहीं हुई, वजह यह क्योंकि बैक जो है वो शुरूत फासिदा से फासिद हो जाती है, तो ईजाब और कबूल तो एक ही हो रहा है तो गोया मबीए को कबूल करने के लिए साथ गैर मबीए के कबूल करने की भी शर्त लगा दी गई, तो यह शर्त फासिद है और शर्त फासिद से बया भी फासिद हो जाती है। और नीज इसलिए भी क्योंकि अगर सिर्फ मबीए में बया को जायज करार दिया जाए फिर तो तफरीक सफका लाजिम आएगा। भाई क्या लाजिम आएगा? भाई याद रखो, अगर बै के अंदर कुछ हिस्से के अंदर बै फासिद है तो सारे में ही फासिद हो जाएगी, या कुछ हिस्से में बातिल है तो सारे में ही बै बातिल हो जाएगी। वजह इसकी ये कि अगर कुछ में बै को बातिल करार दिया जाए और कुछ में सही करार दिया जाए तो वो खरीदार या बेचने वाला मुश्किल में पड़ जाएगा। कभी मुश्किल में बेचने वाला पड़ेगा और कभी मुश्किल में खरीदार पड़ जाएगा, क्योंकि सौदा तकसीम हो गया। खरीदार तो मसलन दो गुलाम इकट्ठे खरीदना चाहता था, अब अगर हम ये कहें कि एक तो यही गुलाम लेना पड़ेगा, इसमें बया हो गई है, एक कोई और आप तलाश कर लें, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। और नीज उसके लिए नीज गुलाम उसको ज्यादा कीमत में मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग गुलाम खरीदेगा तो पूरी पूरी कीमत पे मिलेगा, और जब दो इकट्ठे किसी एक ही आदमी से खरीदेगा तो जाहिर सी बात है वो इकट्ठे बेचने के लिए कीमत में कुछ ना कुछ जरूर कमी कर देगा। तो बया के अंदर चूंकि तफरीक सफका लाजिम आता है, यानी सौदा और मामला तकसीम हो रहा है, लिहाजा वहां पर कुछ के अंदर फसाद आया तो सारी बया ही फासिद हो जाएगी। और फिर उसके बाद यह भी बतलाया कि जिसके साथ निकाह सही हो गया, तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर महर दोनों का मिलाकर इकट्ठा जिक्र किया था तो फिर सारा महर इस एक का ही हो जाएगा जिसके साथ आकद सही हुआ, क्योंकि वो दूसरी वो महल्ले निकाह ही नहीं, वो इस महर के मुस्तहिक होने की उसमें सलाहियत ही नहीं है, तो ये सारा महर किसको मिल जाएगा? इसी एक औरत को जिसके साथ निकाह हो गया है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, सारा महर इस औरत को नहीं मिलेगा जिसके साथ निकाह हो गया, बल्कि उन दोनों औरतों का महरे मिसल देखा जाएगा। महरे मिसल आगे साहिबे हिदाया भी बताएंगे। महरे मिसल इसे कहते हैं कि उस जैसी औरत का जो महर हो, महरे मिसल यानी इसके मिसल जो औरत है उसका महर, और इसके मिसल औरत यानी इसी के खानदान में देखा जाएगा कि इस जैसी कोई औरत हो जो उम्र में भी इसी जितनी हो और जो हुस्न जमाल में भी इसी की तरह हो और नीस बाकेरा या सैयबा होने में भी इसी तरह हो, तो इस जैसी औरत का जो महर है वो इसका क्या है? महरे मिसल है। भाई तो इन दोनों औरतों के महरे मिसल का पता चलाया जाएगा और फिर इन दोनों के महरे मिसल में जो तनासुब है उसी तनासुब से ये जो महर जिक्र किया खामंद ने इसको तकसीम कर देंगे। तो एक के साथ तो निकाह हुआ ही नहीं, उसका हिस्सा तो साकित हो जाएगा, और जिसके साथ निकाह हो गया तो उसके हिस्से में जो आ रहा है वो महर उसके लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर यह मसला जिक्र हुआ कि अगर कोई औरत किसी शख्स पर झूठा मुकदमा कर दे कि इससे मेरा निकाह हो चुका है और ये मुझे खर्चा और रिहाइश नहीं दे रहा, और वो औरत दो झूठे गवाह भी पेश कर दे और फिर काजी उन गवाहों पर फैसला भी कर दे, तो क्या यह फैसला सिर्फ जाहिरन नाफिज होगा या बातिनन भी नाफिज हो जाएगा? जाहिरन नाफिज होने का मतलब यह है कि जाहिरी अहकाम जारी हो जाएंगे, जैसे खामंद के जिम्मे नफका होता है, रिहाइश वगैरह और जरूरियात पूरी करना खामंद के जिम्मे होता है, तो ये सारी चीजें खामंद पर आ जाएंगी, अब उसको ये सारी चीजें अदा करना पड़ेंगी। और बातिनन नाफिज होने का माना यह है कि इंदल्लाह भी वो नाफिज हो जाए। भाई इंदल्लाह भी नाफिज हो जाए यानी अब ये औरत इसके लिए हलाल हो जाए। तो इमाम साहब फरमाते हैं, जाब्ता यह है इमाम साहिब का कि अगर अमला के मुकय्यदा के अंदर, जी मैंने बतलाया एक है अमला के मुकय्यदा और एक है अमला के मुरसला। अमला के मुकय्यदा वो हैं जहां सबबे मिल्कियत को जिक्र किया जाए, और अमला के मुरसला वो हैं जहां सबबे मिल्कियत को जिक्र न किया जाए। मसलन एक शख्स एक बांदी के बारे में दावा कर देता है कि मैं इस बांदी का मालिक हूं और वजह जिक्र नहीं करता, तो ये है मिल्के मुरसल भाई, यानी जिसमें कोई सबब जिक्र नहीं कि किस वजह से आप मालिक हैं। और एक यह है कि साथ वजह भी जिक्र करता है कि यह बांदी मुझे वरासत में मिली है, या इस बांदी को मैंने खरीदा है, या ये बांदी मुझे फलाने तोहफे में दी है, तो देखो यह सबब जिक्र कर दिया, इसको कहते हैं मिल्के मुकय्यद। तो इमाम साहब का जाबता यह है कि अमला के मुकय्यदा के अंदर अगर कोई शख्स झूठी गवाही पेश कर दे और काजी उस पर फैसला कर दे तो इमाम साहब के नजदीक काजी का यह फैसला जाहिरन भी नाफिज होगा और बातिनन भी नाफिज होगा, जबकि मिल के मुरसल के अंदर काजी का फैसला जाहिरन नाफिज होगा और बातिनन नाफिज नहीं, जबकि साहिबैन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक काजी से अगर गवाही कबूल करने में गलती हो जाए यानी वो झूठी गवाही पर फैसला दे दे तो चाहे अमलाके मुरसला हो चाहे अमलाके मुकय्यदा हो काजी का वो फैसला जाहिरन ही नाफिज होगा बातिनन नाफिज नहीं, वो दोनों मियां बीवी नहीं बने, लिहाजा खावंद का उस औरत से सोहबत करना या औरत का उसको अपने ऊपर कुदरत देना यह जायज नहीं होगा, यह हराम रहेगा, जबकि इमाम साहब के नजदीक ये अमुल के मुकय्यद की कबील से है लिहाजा ये औरत उसके लिए हलाल हो गई, ये मियां बीवी बन गए, अब खावंद इससे सोहबत भी कर सकता है। बात समझ में आ गई, फिर दोहरा लें कि जाब्ता क्या हुआ, साहिबैन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उकूद और यह भी याद रखना उकूद और फसूख की बात हो रही है, आकद या फसख के बारे में काजी अगर झूठी गवाही पर फैसला कर दे तो यह फैसला सिर्फ जाहिरन नाफिज होगा बातिनन नाफिज नहीं, जबकि इमाम साहब के नजदीक उकूद और फसूख में काजी ने यह जो झूठी गवाही पर फैसला किया है यह मिलके मुकय्यद के अंदर किया है या मिलके मुरसल में, अगर मिलके मुकय्यद के अंदर यह फैसला किया है तो जाहिरन भी नाफिज बातिनन भी नाफिज, और अगर मिलके मुरसल पर किया है तो जाहिरन नाफिज है बातिनन नाफिज नहीं है। भाई तो साहिबैन ने ये जो झूठे गवाह हैं इनको कियास किया था उन गवाहों पर जो काफिर हो या गुलाम हो, आपने पढ़ा है कि गवाहों में चार सिफात का होना लाजिम है वरना मुसलमान के खिलाफ उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, कि वो गवाह आजाद हो आकिल हो बालिग हो और मुसलमान हो, ये चार सिफात गवाह में होंगी तो फिर ही काजी उसकी गवाही कबूल कर सकता है मुसलमान के खिलाफ वरना कबूल नहीं कर सकता। अब काजी ने किसी मामले में फैसला कर दिया दो गवाहों पर और बाद में पता चला कि वो गवाह तो गुलाम थे वो तो मुसलमान के खिलाफ गवाह बन ही नहीं सकते, या वो दो गवाह तो काफिर थे और काफिर भी मुसलमान के खिलाफ गवाह बन ही नहीं सकता, लेकिन काजी तो फैसला कर चुका है तो इन गवाहों के अंदर जो गुलाम या काफिर थे इसमें इमाम साहब भी फरमाते हैं कि काजी का फैसला सिर्फ जाहिरन नाफिज है बातिनन नाफिज नहीं, तो साहिबैन फरमाते हैं देखा इस मसले के अंदर तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक काजी का फैसला जाहिरन नाफिज हो रहा है, काजी ने गलती कर दी गवाही कबूल करने में, तो जैसे वहां काजी ने गलती की इसी तरह ये जो गवाह जिन्होंने झूठी गवाही दी इसमें भी काजी ने गलती की है तो ये भी सिर्फ जाहिरन नाफिज होना चाहिए, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इन गवाहों को आप वो काफिर और गुलाम गवाहों पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कुफर या गुलामी का पता आराम से चल सकता है, जरा सी तहकीक करवाई जाए तो पता चल जाएगा कि ये गवाह गुलाम है या काफिर हैं, जबकि एक शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इसका पता नहीं चल सकता। भाई बास जगह तो करीने होते हैं कोई और दलाइल मौजूद होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ, बात उस महल की चल रही है जहां ऐसा कोई करीना और दलील वगैरह मौजूद नहीं है, अब वहां पर उस शख्स के सच का पता नहीं चल सकता, तो इन गवाहों को उन काफिर और गुलाम गवाहों पर कयास नहीं कर सकते, उनका हुक्म अलग होगा और इनका हुक्म अलग होगा। और नीस इमाम साहब फरमाते हैं कि इस फैसले को काजी ने ये जो मिलके मुकय्यद पर फैसला किया है इसको बातिनन नाफिज करना भी मुमकिन है, जब बातिनन नाफिज करना मुमकिन है तो इसको बातिनन भी नाफिज कर दिया जाएगा ताकि मुसलमानों के दरमियान झगड़ा पूरे तौर पर खत्म हो जाए, क्योंकि काजी के फैसले का मकसद क्या होता है के लोगों के दरमियान झगड़ा खत्म हो जाए, और झगड़ा कामिल तौर पर तब ही खत्म होगा जब कहा जाए कि यह जाहिरन भी नाफिस है फैसला और बातिनन भी, और अगर सिर्फ जाहिरन नाफिस किया जाए तो मालूम हुआ झगड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो कहते हैं इसको बातिनन नाफिस किया जा सकता है वो इस तरह के इन्होंने सबब जिक्र किया है बाकायदा, इन गवाहों ने आकर कहा कि यह औरत वाकई नफके और सुकना की मुस्तहिक है, क्यों, क्योंकि इस औरत ने इस आदमी से निकाह किया है। भाई तो देखो इन्होंने सबब जिक्र कर दिया है कि औरत नफके और सुकना के हक की मालिक है, और मालिक किस वजह से है, सबब जिक्र कर रहे हैं निकाह को, तो ये मिलके मुकय्यद की कबील से हुआ यह मसला। और इसको बातिनन भी नाफिज किया जा सकता है कि इस काजी के फैसले से पहले इस निकाह को मुकद्दर मान लिया जाए, वो जो सबब उन्होंने जिक्र किया है उसको मुकद्दर मान लिया जाए, यानी यूं कहो उसको इक्तेजान मान लिया जाए, क्योंकि काजी का यह फैसला तकाजा कर रहा है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, एक शख्स अपनी बीवी को या तालिकु कहकर पुकारता है, तो इंद फुकहा उस औरत को तलाक हो गई। वजह यह कि भाई खावंद उसको या तालिकु कह रहा है, खावंद ही के तो हाथ में उसकी तलाकें हैं और खावंद उसको या तालिकु कह रहा है, तो खावंद का यह कलाम तभी सही हो सकता है जब इसको पहले तलाक वो दे चुका हो, उसके बगैर तो उसका कलाम सही ही नहीं बनता, या तालिकु कहना सही ही नहीं बनता। तो लिहाजा यहां इख्तेजान तलाक मान ली जाएगी कि ऐ वो शख्स जो तलाकों का मालिक है, तुम अपनी बीवी को या तालिकु कह रहे हो, मालूम है तुम तलाक दे चुके हो, वरना तुम कभी भी अपनी बीवी को या तालिकु न कहते। बात समझ में आ गई? तो वहां इख्तेजान तलाक को मान लिया जाएगा, क्योंकि तलाक का मालिक या तालिकु कह रहा है, तो उसका कलाम सही करने की सूरत ही यह है कि उससे पहले इख्तेजान तलाक मस्दर को मान लिया जाए। तो यहां पर भी काजी फैसला कर रहा है नफके और रिहाइश वगैरह का, तो काजी के फैसले को बातिनन नाफिज करना यहां मुमकिन है कि उस काजी के फैसले से पहले इक्तेजाअन निकाह मान लिया जाए, यानी जिस आकद का जिस आकद पर वो फैसला कर रहा है उसको इक्तेजाअन पहले मान लिया जाए। और अगर उस दावा करने वाले ने और उसके गवाहों ने सबब जिक्र नहीं किया तो फिर यह मिलकर मुरसल की कबील से हुआ, और मिलके मुरसल के अंदर फिर इक्तेजान किसी चीज को हम माकबल में मुकद्दर नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि उसने कोई सबब ही जिक्र नहीं किया। वो बै जिक्र करता तो हम इक्तेजान बै को पहले मान लेते, वो जो है तोहफे को जिक्र करता यानी हिबा को, तो हम इक्तेजान पहले हिबा मान लेते। बात समझ में आ रही है? वो निकाह को जिक्र करता तो हम पहले निकाह को मान लेते, लेकिन उसने कोई सबब जिक्र ही नहीं किया, तो लिहाजा यहां इक्तेजान किसी एक सबब को तरजीह देकर उसको साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि असबाब के अंदर तज़ाहुम है, टकराव है, मुकाबला है। हर सबब के अहकाम अलग अलग हैं, हर सबब के अहकाम अलग अलग हैं, और हर एक के जरिए मिल्कियत आ रही है। खरीदेगा तो भी मालिक बन जाएगा, वरासत में चीज मिलेगी तब भी मालिक बन जाएगा, हिबा मिलेगा, तोहफा मिलेगा तब भी मालिक बन जाएगा। तो लेकिन हर एक के अहकाम अलग अलग हैं, तो लिहाजा हम किसी एक को भी तरजीह नहीं दे सकते अपनी तरफ से, क्योंकि मिल्कियत तो हर एक से आ रही है। और आप किसी एक को तरजीह दे दें, भाई किस वजह से आप तरजीह दे रहे हैं? तरजीह की यहां कोई सूरत ही नहीं है। तो ये जो असबाब है इनके दरमियान टकराव है। क्या माना टकराव है? यानी अगर आप एक को तरजीह देते हैं तो बाकी असबाब भी सामने खड़े हैं कि भाई बाकियों को क्यों नहीं तरजीह दे रहे, मुकाबले में और भी मौजूद हैं। आप दूसरे को तरजीह देते हैं तो बाकी अभी भी मुकाबले में मौजूद हैं कि भाई आप इस एक को क्यों तरजीह दे रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं तरजीह दे रहे। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा हासिल कलाम ये साहिबैन और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक उकूद और फुसूख में काजी अगर झूठी गवाही पर फैसला कर दे तो उसका फैसला सिर्फ जाहिरन नाफिज होता है, बातिनन नहीं। जबकि इमाम साहब के नजदीक उकूद और फुसूख में अगर मिलके मुकय्यद पर काजी फैसला कर रहा है झूठी गवाही पर, तो यह जाहिरन भी नाफिज होगा और बातिनन भी। और अगर मिलके मुरसल पर काजी फैसला कर रहा है तो यह जाहिरन तो नाफिज होगा, बातिनन नाफिज नहीं होगा। अब आइए आज के सबक पर। बाबुन फिल औलिया इवल अकफा वयन आकिदु निकाहुल हुर्रतिल आकिलतिल बालिगति बिरिज़ाहा व इल्लम याकिद अलैहा वलियुन बिकरन कानत औ सय्यिबा। बाबुन फिल औलिया इवल अकफा, ये बाब है औलिया और अकफा के बयान में। औलिया जमा है वली की, और वली उसको कहते हैं जिसको विलायत हासिल हो, और यह बात पहले जिक्र हो चुकी कि विलायत इसे कहते हैं कि गैर पर किसी का कौल नाफिज हो, चाहे वो माने या ना माने। जैसे देखो, शरीयत ने बाप को इख्तियार दिया है, वो अपने छोटे बच्चों का जहां चाहे निकाह कर सकता है, जहां बाप निकाह करवाएगा उनका निकाह हो जाएगा और वो बालिग होने के बाद भी अब उस निकाह को रद्द नहीं कर सकते भाई। तो देखो बाप को जो शरीयत ने ये इख्तियार दिया कि बाप का हकद उन पर नाफिज हो गया, बाप का कौल उन पर नाफिज हो गया, चाहे वो माने या ना माने हर हाल में, तो इसको कहते हैं विलायत। तो बाप क्या हुआ? वली। यानी यूं को विलायत कहते हैं कि एक आदमी को दूसरे आदमी पर इख्तियार हो भाई, किसी मामले के अंदर इख्तियार हो तो उसको विलायत कहते हैं, और जो साहिब इख्तियार है यानी जिसके पास इख्तियार है उसको वली कहते हैं। तो इस बाब के अंदर साहिब हिदायत अवलिया के बारे में बयान फरमाएंगे कि किस किस को विलायत निकाह हासिल होती है, कौन दूसरे का निकाह करवा सकता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी कि नाबालिग बेटा या बेटी हो तो बाप को उनका निकाह करवाने का इख्तियार हासिल है, तो बाप इनका वली हुआ। क्या हुआ? वली हुआ। तो किस किस को यह विलायत हासिल होती है उसको साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। और नीज अकफा का बयान होगा, अकफा कुफ से है, कुफ उन भाई हमजा है आखिर में, और कफात कहते हैं बराबरी को। कफात का क्या माना है? बराबरी। लोग भाई रिश्ते वगैरह करते हुए कफात का ख्याल रखते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन पर लोग फखर करते हैं, मसलन खानदान है, जिसका जितना अच्छा खानदान होता है आप देखते हैं कि वो उस पर फखर करते हैं। इसी तरह माल और दौलत पर भी लोग फखर करते हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होती है वो उतना फखर करता है। इसी तरह पेशों पर भी लोग फखर करते हैं, जिसका जितना आला पेशा होता है वो उस पर फखर करता है। तो लिहाजा जब रिश्ता किया जाता है तो अमूमन इन चीजों में बराबरी को देखा जाता है। अदना लोगों को लोग अपनी बेटी नहीं देते, खानदान अदना है या माल में कमजोर हैं या पेशा उनका कम दर्जे वाला है तो अमूमन लोग उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे भाई। तो निकाह के अंदर इन चीजों के अंदर कफात मोतबर है। क्या है? कफात मोतबर है। मसलन आपको आगे बतलाएंगे कि इंदल अहनाफ आकिला बालिगा लड़की अपना निकाह खुद कर सकती है और वो खुद अपना निकाह करेगी तो वो मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन वो अपने बराबर के लोगों में होना चाहिए, अपने बराबर के लोगों में, यानी खानदान के एतबार से, माल के एतबार से और पेशों के एतबार से वो जो लड़के वाले हैं वो इनके बराबर के होने चाहिए। इसको कहेंगे इसने कुफ में निकाह किया है। किस में? कुफ में निकाह किया है। और अगर ये लड़की गैर कुफ में निकाह करती है यानी अपने से कमतर खानदान के अंदर तो फतवा इस पर है कि ये निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, ये निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। देखिए भाई किताब पर कहते हैं बाब उन फिल औलिया इवल अकफा, ये बाब है औलिया के बयान में, वल अकफा और हम पल्ला लोगों के बयान में। अकफा जमा है कुफ उनकी, और ये हम पल्ला और बराबर के लोगों को कहते हैं, हम रुतबा लोगों को कहते हैं। तो बाब उन फिल औलिया इवल अकफा, ये बाब है औलिया और अकफा यानी हम पल्ला और हम मरतबा लोगों के बयान में। ये अकफा का आगे साहिब हिदायत तफसील से बयान फरमाएंगे, पूरी फसल जिक्र करेंगे कि कौन लोग बराबर के हैं और कौन लोग बराबर के नहीं हैं। तो कहते हैं वयन आकिदु निकाहुल हुर्रतिल आकिलतिल बालिगति बिरिज़ाहा, कि मुनाकिद हो जाता है आजाद आकिला बालिगा औरत का निकाह, बिरिज़ाहा उसकी अपनी मर्जी से, व इल्लम याकिद अलैहा वलीयुन, अगरचे वली उस पर आकद न बांधे, अगरचे वली उसका निकाह न करवाए, ये खुद अपनी मर्जी से निकाह कर ले तो निकाह हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है अपने बराबर के लोगों में होना चाहिए, अगर अपने से अदना दर्जे के लोगों में किया तो ये निकाह होगा ही नहीं। तो कहते हैं वह इल्लम याकिद अलैहा वलीयुन, अगरचे वली उस पर आकद न बांधे यानी उसका निकाह न करवाए, ये खुद कर ले फिर भी हो जाएगा, बिकरन कानत औसयिबा बाकेरा हो ये औसयिबा या गैर बाकेरा, यानी चाहे कंवारी हो चाहे गैर कंवारी। गैर कंवारी है मसलन पहले एक जगह निकाह हो चुका था और फिर खामन से अलैदगी हो गई तो ये अब सयिबा है भाई, बाकेरा नहीं। तो निकाह करने वाली औरत चाहे बाकिरा हो चाहे सईबा हो, वो अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह कर सकती है, वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, चाहे वली खुश हो चाहे ना खुश हो भाई, चाहे उसको बताया है चाहे उसको नहीं बताया, लेकिन अपने बराबर के लोगों में होना चाहिए। अगर अपने से कमतर लोगों के साथ वो निकाह किया तो वो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा भाई। हमारे नजदीक याद रखो जाबता ये है कि जिस शख्स को अपने माल में तसर्रुफ का हक हासिल है उसको अपनी जात के बारे में भी तसर्रुफ का हक हासिल है, वो जहां निकाह करना चाहे कर सकता है। और आकिला बालिगा अगर उसके पास माल है तो वो अपने माल में जैसे चाहे तसर्रुफ कर सकती है, जहां चाहे खर्च करे, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। तो जब उसको माल के बारे में तसर्रुफ का हक है तो अपनी जात के बारे में भी उसको तसर्रुफ का हक हासिल होगा। बात समझ में आ गई? फिर तर्जमा देख लीजिए, वयनाकिदु निकाहुल हुर्रतिल आकिलतिल बालिगति बिरिज़ाहा वइन लम याकिद अलैहा वलीयुन, कि आजाद आकिला बालिगा का निकाह मुनक़िद हो जाता है उसकी रजामंदी से, वइन लम याकिद अलैहा वलीयुन अगरचे वली ने उस पर आकद न बांधा हो, बिकरन कानत औ सईबा चाहे वो आजाद आकिला बालिगा जो है बाकिरा हो औ सईबा या सईबा हो, यानी चाहे कंवारी हो या गैर कंवारी हो, عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهم الله, ये शेखैन रहमहुम अल्लाह के नजदीक है, في ظاهر الرواية, किस में? ظاهر الرواية में। ظاهر الرواية भाई ये तमाम तलबा को हमेशा याद होना चाहिए कि ये ظاهر الرواية किसे कहते हैं। याद रखो ظاهر الرواية इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की छह किताबें जो हैं वो ظاهر الرواية कहलाती हैं, मबसूत, ज्यादात, जामिअ सगीर, जामिया कबीर, सियर सगीर और सियर कबीर। ये फिका के तालिब इलम को हर वक्त ये याद होना चाहिए भाई। तो ये जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की छह किताबें हैं ये जाहिर रिवायत कहलाती हैं। वजह यह कि इनको रिवायत करने वाले हर हर जमाने में इतने ज्यादा लोग हैं कि इनमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं। मालूम हुआ ये कतई और यकीनी तौर पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें ही हैं, और जबकि इनके अलावा जो किताबें हैं वो नवादिर कहलाती हैं, यानी उनके रिवायत करने वाले इतने ज्यादा नहीं। तो वहां तो शक और शुबा आ सकता है कि पता नहीं ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की वही तसनीफ है या वो नहीं है, या इसमें कुछ रद्दो बदल तो नहीं कर दिया गया, तो उनमें शक और शुबा आ सकता है। लेकिन ये जो जाहिर रिवायत हैं ये तवातुर की तरह मनकूल हैं, यानी हर जमाने में इनको नकल करने वाले बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि अकल उनके इज्तिमा अल कज़िब को महाल समझती है भाई। तो ये छह किताबें हैं, कौन सी छह किताबें? मबसूत, ज्यादात, जामे सगीर, जामे कबीर, सियरे सगीर और सियरे कबीर भाई। ये छह किताबें जाहिर रिवायत, और बाकी किताबें जो हैं नवादिर कहलाती हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की। और याद रखना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की बहुत ज्यादा तसानीफ हैं, हत्ता के बाद उलमा ने लिखा कि उनकी तसानीफ की तादाद 1000 है भाई, 1000। और ऐसी ऐसी तसानीफ हैं कि इंसान देखता है तो हैरान रह जाता है, ऐसी फसीह व बलीग इबारतें हैं कि इंसान देखता है तो हैरान रह जाता है भाई। जैसे कहते हैं कि एक शख्स जो था कोई बड़ा आलिम था ईसाइयों या यहूदियों का, और वो मुसलमान हो गया भाई। किसने पूछा, मुसलमान होने की वजह पूछी कि आप क्यों मुसलमान हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब जामिअ कबीर देखी, ये ऐसी कमाल की किताब है और इतनी फसीह व बलीग इबारतें हैं इसकी कि अगर इमाम मोहम्मद ये किताब लिखकर दावा नबूवत कर देते कि मैं पैगंबर हूं, देखो मैंने ये ऐसी किताब लिखी है, कोई लिखकर दिखाए भाई ऐसी किताब, तो यकीनन वो इस पर दावा कर सकते थे, यानी इतनी अजीम इन्होंने किताब लिखी है। लेकिन ये किताब लिखने वाला यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जब एक उम्मती का यह हाल है तो पैगंबर का क्या हाल होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैं मुसलमान हो गया भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की कोई हजार तसानीफ हैं भाई। तो ये किसका मजहब हुआ? शेखैन रहमहुमल्लाह का, कि आकिला बालिगा अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। वन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह अन्नहु ला यनाकिदु इल्ला बिवलीयिन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि आकिला बालिगा का निकाह मुनाकिद नहीं होगा इल्ला बिवलीन, मगर किसके जरिए, वली के जरिए, वली करवाएगा तो निकाह होगा वरना खुद निकाह नहीं होगा। वाइंदा मोहम्मदीन रहमहुल्लाहु यनाकिदु मौकूफन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक ये जो आकिला बालिगा ने अपना निकाह खुद करवाया है ये मुनाकिद तो हो जाएगा मौकूफन, लेकिन मौकूफ रहेगा, मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाएगा, यानी वली इजाजत देगा तो यह निकाह नाफिज हो जाएगा, अगर वली ने इजाजत न दी तो फिर यह नाफिज नहीं होगा, तो यह वली की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। यह माना है वाइंदा मोहम्मदीन रहमहुल्लाह यनाकिदु मौकूफन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक यह आकिला बालिगा का निकाह मुनाकिद तो हो जाएगा लेकिन मौकूफ होकर। वकाल मालिक व शाफई रहमहुल्लाह ला यनाकिदु निकाह बिइबारति निसाई असला, इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि औरतों की इबारत से, औरतों के ईजाब और कबूल से निकाह मुनाकिद ही नहीं होता, यानी उनके नजदीक वली इजाजत दे भी दे फिर भी औरत अपना निकाह खुद करे वो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, क्योंकि निकाह औरतों की इबारत से मुनाकिद नहीं होता। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल मालिकुं व शाफई रहिमहुमल्लाहु, और इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुमल्लाह फरमाते हैं ला यनाकिदु निकाह बिइबारतिन निसाई असला, कि निकाह मुनाकिद होता ही नहीं औरतों की इबारत से असला ऐ कतअन कतई तौर पर, लिअन्ना निकाह युरादु लिमकासिदिही। दलील जिक्र कर रहे हैं इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुमल्लाह की, वो फरमाते हैं निकाह औरतों की इबारत से यानी औरतों के इजाब और कबूल से मुनक़िद ही नहीं होगा, लिअन्ना निकाह युरादु लिमकासिदिही, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इसका इरादा किया जाता है लिमकासिदिही, निकाह के मकासिद की वजह से। भाई निकाह के मकासिद होते हैं, निकाह के जरिए एक नया खानदान आबाद करना है, घर बसाना है, औलाद हासिल होगी, औलाद की तरबियत करनी है, घर का निजाम चलाना है, तो निकाह के बहुत से फायदे होते हैं, उन मकासिद के लिए निकाह किया जाता है। और अगर यह मामला औरतों के सुपुर्द कर दिया जाए तो औरतों के अंदर इतनी अकल नहीं होती, वो इतनी समझदार नहीं होती, लिहाजा इन मकासिद में खलल आएगा, खराबी आ जाएगी, लिहाजा इसलिए औरतों को निकाह करने की इजाजत नहीं है, उनकी इबारत से निकाह मुनक़िद ही नहीं होगा। भाई तो कहते हैं लिअन्ना निकाह युरादु लिमकासिदिही, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इसका इरादा किया जाता है निकाह के मकासिद के लिए, व तफवीज़ु इलैहिन मुखिल्लुम बिहा, फवज़ युफवीज़ु, तफवीज़ का माना है सुपुर्द करना, मुखिल का माना है खलल डालने वाला, व तफवीज़ु इलैहिन, और इस निकाह को इन औरतों के सुपुर्द करना, मुखिल्लुम बिहा, वो इन मकासिद में खलल डालने वाला है, यानी फिर वो मकासिद हासिल नहीं हो सकेंगे पूरी तरह और उनमें खराबी आ जाएगी। इल्ला अन्ना मुहम्मदन रहमहुल्लाहु यकूलु यर्तफ़िउल खललु बिइजाज़तिल वली, अल्बत्ता इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो खलल उठ जाएगा वली की इजाजत से। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया था कि निकाह औरत की इबारत से मुनाकिद तो हो जाएगा लेकिन मौकूफ रहेगा, नाफिज नहीं होगा जब तक वली इजाजत ना दे। तो वो फरमाते हैं कि देखो औरत जो है अपना निकाह कर रही है तो खुद नफ्स से निकाह के अंदर कोई खराबी नहीं है। भाई निकाह कोई खराब चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। तो नफ्स से निकाह में कोई खराबी नहीं है कि जिसकी वजह से हमने मना किया हो। हमने मना इसलिए किया है क्योंकि निकाह के मकासिद में खलल आएगा, इसलिए हमने कहा कि इसको वली से इजाजत लेनी चाहिए फिर निकाह करना चाहिए, और जब वली इजाजत दे देगा तो वो जो खलल और खराबी थी वो दूर हो जाएगी। ये माना है इल्ला न मुहम्मदन रहमहुल्लाहु यकूलु, मगर एक इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं यरतफिउल खललु, कि ये जो खलल और खराबी आ रही है इन औरतों की अकल कम होने की वजह से तो ये उठ जाएगी, यरतफिउल खललु, ये खराबी उठ जाएगी, दूर हो जाएगी भी इजाजतिल वली, वली की इजाजत से। तो वो इसलिए कहते हैं कि वली की इजाजत पर मौकूफ है, जब वली की इजाजत साथ शामिल हो जाएगी तो फिर यह खराबी से बचाव हो जाएगा। आगे देखिए वह वजहुल जवाजी, आप जवाज की वजह जिक्र कर रहे हैं, मतन में क्या फरमाया था कि आकिला बालिगा अपना निकाह करेगी तो मुनाकिद हो जाएगा, चाहे ये बाकिरा हो चाहे सैयबा हो शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वजहुल जवाज़ी, और इस निकाह के जायज होने की वजह यह है कि अन्नहा तसर्रफत फी खालिसी हक्किहा, कि इस औरत ने खालिस अपने हक में तसर्रुफ किया है। ये औरत जो अपना निकाह कर रही है, जो आकिला बालिगा है, ये खालिस अपने हक में तसर्रुफ कर रही है, किसी और के हक में ये दखल नहीं दे रही। तो ये खालिस अपने हक में तसर्रुफ कर रही है, वही अमीन अहली ही, और ये अहले तसर्रुफ भी है, यानी ये आजाद है, आकिला बालिगा है, और आजाद और आकिल बालिग वो साहिब तसर्रुफ होता है, वो अपने माल के अंदर भी तसर्रुफ जैसे करना चाहे कर सकता है, इसी तरह वो अपनी जान में भी जैसे तसर्रुफ करना चाहे कर सकता है। तो कहते हैं वही अमीन अहली ही, और ये जो है ये आकिला बालिगा आजाद औरत जो है ये मीन अहली ही, ये अहले तसर्रुफ है, यानी इसको तसर्रुफ का हक दिया है शरीयत ने। लिकौनिहा आकिलतन मुमय्यिज़तन, इसलिए क्योंकि ये आकिला है, मुमय्यिज़ा है, यानी समझदार है, मुमय्यिज़ा जो अच्छे बुरे में फर्क करने वाली हो। शेखैन क्या फरमाते हैं, ये औरत अपना निकाह खुद कर सकती है क्योंकि आकिला है, ये अच्छे बुरे को समझती है भाई, तो लिहाजा इसको निकाह की इजाजत है। ये माना है कि ये औरत जो है अहले तसर्रुफ है, लिकाउन यह आकिलतन मुमय्यिज़तन, इसलिए क्योंकि ये अकल वाली है, मुमय्यिज़तन अच्छे बुरे में फर्क करने वाली है, इम्तियाज करने वाली है। वलिहादा कान लह तसर्रुफ फिल माली, और इसी वजह से इसको माल में भी तसर्रुफ का हक होता है, इसके पास माल हो तो जहां चाहे खर्च कर सकती है, शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी इस पर नहीं है भाई। तो मालूम हुआ देखो इसको माल में भी इसीलिए तसर्रुफ का हक है। और नीज वला अख्तियार उल अजवाजी, नीज इस आकिला बालिगा आजाद को खावंद इख्तियार करने का भी हक है, इसको खावंद इख्तियार करने का भी हक है। चुनाचे इसीलिए जब बाप बेटी का निकाह करवाता है तो जाकर पूछता है कि तुम्हारी इजाजत है मैं यहां निकाह तुम्हारा करवा दूं, अगर वो रद्द कर देगी तो निकाह ही नहीं होगा। तो मालूम हुआ ये इसको खावंद के भी इख्तियार करने का हक दिया है शरीयत ने, कि इससे मैं निकाह चाहती हूं और या इससे मैं निकाह नहीं चाहती भाई। तो कहते हैं वला अख्तियार उल अज़वाजी, और इस आकिला बालिगा आजाद को अपना खावंद इख्तियार करने का भी हक है। वह इन नमा युतालबुल वलीयु बितज़वीजी, ये एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये कि आपने हमें कहा कि ये जो आकिला बालिगा आजाद है ये खालिस अपने हक में तसर्रुफ कर रही है, और नीज ये साहिब तसर्रुफ भी है, इसीलिए ये अपने माल में भी तसर्रुफ कर सकती है, और नीज इसको खावंद इख्तियार करने का भी हक दिया है शरीयत ने, कि जिस खावंद के बारे में इनकार करे वो उसके साथ उसका जबरदस्ती निकाह नहीं करवाया जा सकता, तो फिर इसके वली को क्यों कहा जाता है, पैगाम निकाह वली को क्यों भेजते हैं, बराह रास्त इसको क्यों नहीं भेजा जाता
जी।
तो शादी का पैगाम वली को भेजा जाता है, बाप वगैरह को शादी का पैगाम भेजा जाता है, लड़की को नहीं भेजा जाता बराह रास्त, उसकी फिर क्या वजह है जब सारा इख्तियार इसी के पास है। कहते हैं इसलिए कि शरीयत भी यही दर्स देती है कि इसके औलिया को पैगाम निकाह भेजो, और उर्फ में उर्फ कहते हैं आम लोगों की आदत, और आम लोगों की आदत और तरीका भी यही है, बराह रास्त लड़की को पैगाम निकाह नहीं भेजा जाता बल्कि उसके अवलिया को पैगाम निकाह भेजा जाता है, वो इसलिए ताकि कहीं इस लड़की की निस्बत बेहयाई की तरफ ना की जाए, क्योंकि लड़की के अंदर बे इंतहा ज्यादा हया होती है, और यह हया औरत का जेवर है भाई। तो ये हया जो है लड़की का जेवर है, ये उसका बातिनी हुसन है, और जितनी ज्यादा उसके अंदर हया होगी उतनी ही ज्यादा वो पसंदीदा है भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा उसको बराह रास्त पैगाम नहीं भेजा जाता, वो बराह रास्त इन मामलात में दखल नहीं देती, ताकि कहीं लोग ये ना कहें ये तो बड़ी बेहया है कि ये अपने निकाह के मामलात खुद तय कर रही है भाई। तो कहते हैं वह इन नमा युतालबुल वली युबी तजवीजी, कहते हैं कि जो वली है उसी से निकाह करवाने का मुतालबा किया जाता है। कैला तुनसब इलल वकाहती, ताकि कहीं इस आकिला बालिगा आजाद लड़की की निस्बत न की जाए। इलल वकाहती, वकाहत कहते हैं बेहयाई और बेशर्मी को, कि कहीं इसकी निस्बत बेहयाई और बेशर्मी की तरफ न की जाए, लोग आपस में बातें न करने लग पड़े कि इसमें तो हया ही नहीं है भाई। सुम मफी जाहिर रिवायती ला फर्क बैनल कुफी व गैर कुफी, कहते हैं फिर जाहिर रिवायत के अंदर कोई फर्क नहीं किया गया कुफ और गैर कुफ का, यानी जाहिर रिवायत में सिर्फ इतना है जो मतन में आ गया, कि आजाद हाकिला बालिगा लड़की अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह कर सकती है, चाहे वो लड़की बाकिरा हो चाहे सैयबा हो, जहां चाहे वो निकाह कर सकती है। वहां ये नहीं लिखा गया कि बराबर वालों में करेगी तो निकाह होगा, बराबर वालों में नहीं करेगी तो निकाह नहीं, तो मालूम हुआ वहां फर्क नहीं किया गया। कहते हैं सुम फी जाहिर रिवायत ला फर्क बैन अल कुफ व गैर अल कुफ, फिर जाहिर रिवायत में कोई फर्क नहीं है कुफ और गैर कुफ के अंदर, लाकिन नलिल वली ये एतराज फी गैर अल कुफ, लेकिन यह है कि वली जो है वो एतराज कर सकता है गैर कुफ में, यानी सिर्फ यह है कि वली जो है एतराज कर सकता है गैर कुफ में, अगर निकाह करेगी तो वली एतराज कर सकता है। क्या माना एतराज, यानी वली काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकता है कि इसने कम लोगों के अंदर शादी की है और यह तो हमारे खानदान के लिए ऐब और ताने की बात बन जाएगी, लोग कल हमें ताने देंगे कि तुम लोगों ने तो अपनी लड़की इतने छोटे खानदान को दी हुई है, तो लिहाजा वली एतराज कर सकता है काजी के पास जाकर और फिर काजी उस निकाह को फसख करवा देगा। तो ये माना है लाकिन नलिल वली ये ले एतराज फी गैर अल कुफ, लेकिन गैर कुफ की सूरत में वली को एतराज का हक होगा। वान अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह और शेखैन रहिमहुमल्लाह से ये भी रिवायत है कि अन्नहु ला यजूज़ु फी गैर अल कुफ, कि गैर कुफ में अगर आजाद आकिला बालिगा अपना निकाह करेगी तो वो होगा ही नहीं, वो मुनाकिद ही नहीं होगा। और याद रखो इसी पर फतवा है, लड़की अगर गैर कुफ में निकाह करेगी तो वली को एतराज का हक नहीं मिलेगा बल्कि वो निकाह ही सिरे से नहीं होगा। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि इस फितने के जमाने में अगर मुतल्लका सलासा भी अपनी मर्जी से गैर कुफ में निकाह करेगी तो भी वो निकाह मुनकिद नहीं होगा। एक औरत है, उसका पहले निकाह हो चुका, फिर खावन से जुदाई आ गई, उसने तीन तलाकें दे दी, अब ये औरत अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह कर सकती है, लेकिन ये औरत भी अगर गैर कुफ में निकाह करेगी तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। तो शेखैन रहिमहुमल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु ला यजूज़ु फी गैर अल कुफ, के ये जायज नहीं है गैर कुफ में, लिअन्नहु कम मिन वाकिअ ला युरफ़ऊ, इसलिए क्योंकि कितने ही वाकयात होते हैं कि उनकी मुराफात नहीं की जाती काजी तक, यानी कितने ही मामलात होते हैं वो काजी तक नहीं पहुंचाए जाते, लोग काजी तक जाते ही नहीं, मामला वैसे ही छोड़ देते हैं, और नीज अगर पहुंचाए भी काजी तक तो हर एक अच्छे तरीके से मामला बयान नहीं कर सकता, और नीज काजी भी कभी पता नहीं वो अदल व इंसाफ करता है या अदल व इंसाफ नहीं करता। लिहाजा वली को एतराज का हक देने के बजाय यूं कहा जाएगा कि यह निकाह ही मुनकिद नहीं हुआ, क्योंकि अगर वली को सिर्फ एतराज का हक दिया जाए कि आप एतराज कर सकते हैं काजी के पास जाकर, तो पता नहीं वली काजी के पास जाता है या नहीं जाता, लिहाजा यह निकाह मुनकिद ही नहीं होगा। لأنه كم من واقع لا يرفع, इसलिए क्योंकि कितने ही वाकयात ऐसे होते हैं ला युरफाऊ के उनको उठाया नहीं जाता, यानी काजी तक पहुंचाया ही नहीं जाता, लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखिए वयुरवा रुजू मुहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला इला कौलिहिमा, और रिवायत किया गया है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के रुजू को इला कौलिहिमा शेखैन रहमहुल्लाह के कौल की तरफ। रिवायत किया गया है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने भी शेखैन रहमहुमल्ला के कौल की तरफ रुजू फरमा लिया था। यह इबारत अच्छी तरह समझ लो, बजाहिर यूं लगता है कि यह जो अभी पिछली सतर में मसला जिक्र हुआ कि वान अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहमहुमल्लाह अन्नहु ला यजूज़ु फी गैर अल कुफ, कि शेखैन फरमाते हैं गैर कुफ में खुद निकाह करे तो होगा ही नहीं, तो लगता है आगे कि इमाम मोहम्मद ने इस कौल की तरफ रुजू कर लिया शेखैन के, लेकिन यह मुराद नहीं है, बल्कि असले मसला की तरफ आओ। असले मसला क्या था, शेखैन के नजदीक वो निकाह मुनकिद हो जाएगा आजाद आकिला बालिगा खुद करेगी, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि मौकूफ मुनकिद होगा जब तक वली इजाजत नहीं देगा वो नाफिज नहीं होगा। तो इसके अंदर जिक्र फरमा रहे हैं कि यह रिवायत किया गया है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने शेखैन रहमहुमल्लाह के कौल की तरफ रुजू कर लिया था कि आजाद आकिला बालिगा अपनी मर्जी से निकाह करेगी तो वह मौकूफ नहीं मुनकिद होगा बल्कि नाफिज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये माना है वयुरवा रुजू मुहम्मदिन रहमहुल्लाह इला कौलिहिमा, और रिवायत किया गया है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के रुजू को शेखैन रहमहुमल्लाह के कौल की तरफ। आगे देखिए, वला यजूज़ु लिल वली इजबारुल बिक्रिल बालिगति अलन निकाह। यहां विलायत की तफसील बयान करने लगे हैं भाई साहिब हिदाया। याद रखो विलायत दो किस्म पर है भाई, एक विलायत नुदुब, विलायत नुदुब, और एक है विलायत इजबार भाई। विलायत इजबार ये कि सगीर या सगीरा हो, नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची हो, तो बाप को इन पर विलायत हासिल होती है, वो जहां चाहे इनका निकाह कर सकता है और जितने महर में चाहे निकाह करवा सकता है, चाहे थोड़े में करवाए चाहे ज्यादा के अंदर करवाए। तो ये है विलायत इजबार। इजबार का माना है मजबूर करना, जबरदस्ती करना। तो देखो बाप जबरदस्ती जहां चाहे उनका निकाह कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? विलायत इजबार, विलायत इजबार। और दूसरी विलायत नुदुब है। विलायत नुदुब जैसे आम तौर पर होता है, लड़की जवान है, आजाद है, आकिल है, बालिग है, तो इसका बाप इसका निकाह करवाता है, इसका बाप इसका निकाह करवाता है, तो ये विलायत नुदुब है। बाप को विलायत है यानी वो निकाह करवा रहा है, लेकिन ये विलायत नुदुब है। ये जो विलायत और नुदुब है ये हकीकत में तौकील होती है, गोया लड़की ने बाप को अपना वकील बनाया हुआ है। तो यहां गोया विलायत है ही नहीं, हकीकत में क्या है? बाप वकील है, बाप करवा रहा है, या भाई जो भी निकाह करवा रहा है वो इसका वकील है, क्योंकि अभी बताया कि जबरदस्ती कोई उसका निकाह नहीं करवा सकता, वो राजी होगी तो निकाह होगा, वो राजी नहीं तो निकाह भी नहीं। तो इसको विलायत कहते हैं लेकिन हकीकत में ये तौकील है। तो ये विलायत नुदुब है, यानी अच्छी है, पसंदीदा है कि इस तरह निकाह होना चाहिए भाई। और दूसरी विलायत इजबार है कि उसमें बाप अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह करवा दे सगीर या सगीरा का, नाबालिग बेटा या नाबालिग बेटी का, इसको विलायत इजबार कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, इसी को विलायत जबर भी कहते हैं, विलायत इजबार भी, विलायत जबर भी। इसी तरह इसको विलायत हतम भी कहते हैं, हा ता मीम, हा हुके वाली हा भाई, हा ता मीम, विलायत हतम। हतम का माना होता है लाजिम, लाजिम और पक्की, यानी ये भी विलायत हतम है, पक्की विलायत है, लाजिम विलायत है, वो जैसे चाहे निकाह इनका करवा सकता है। और नीज इसको विलायत इस्तिबदाद भी कहते हैं, इस्तिबदाद, इस्तबद्द यस्तबिद्दो इस्तिबदादन। इस्तिबदाद का माना है मुस्तकिल होना, यानी बाप को मुस्तकिलन पूरी विलायत हासिल है, जहां चाहे इनका निकाह करवा दे। तो विलायत कितनी किस्म पर? दो, एक विलायत नुदुब, एक विलायत इजबार। विलायत नुदुब के अंदर हकीकतन क्या होता है? वकील बनाया जाता है, जैसे आम लड़की का बाप निकाह करवाता है, तो ये दरअसल उसकी तरफ से वकील होकर निकाह करवा रहा है। लेकिन बहरहाल इसको विलायत नुदुब कहते हैं, विलायत नाम इसको दे दिया। और दूसरी विलायत इजबार है, और इसके कई नाम हैं, विलायत इजबार, विलायत जबर, विलायत हतम, हा तामीम, विलायत हतम और विलायत इस्तिबदाद भाई। अब किस पर विलायत नुदुब है और किस पर विलायत इजबार है? तो मैंने बयान कर दिया कि नाबालिग बेटा या बेटी हो तो उन पर विलायत इजबार हासिल है, जबकि आकिला बालिगा जो है वहां पर विलायत नुदुब है भाई, यानी वो वकील बनकर बाप उसका निकाह करवा सकता है, जबरन उसका निकाह नहीं करवा सकता। तो कहते हैं वला यजूज़ु लिल वली इजबारुल बिक्रिल बालिगति अलन निकाही, और जायज नहीं है वली के लिए इजबारुल बिक्रिल बालिगति बाकिरा बालिगा को मजबूर करने की, अलन निकाही निकाह पर। वली के लिए जायज नहीं है कि वो बालिगा बाकिरा को मजबूर करे निकाह पर, बाकिरा बालिगा को मजबूर करे निकाह पर। देखिए भाई कहते हैं वला यजूज़ु लिल वली इजबारुल बिक्रिल बालिगति अलन निकाही, और जायज नहीं है वली के लिए इजबारुल बिक्रिल बालिगति बाकिरा बालिगा को मजबूर करना, अलन निकाही निकाह पर। वली के लिए जायज नहीं है इजबारुल बिक्रिल बालिगति अलन निकाही के वो बाकिरा बालिगा को निकाह पर मजबूर करे, यानी उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह करवा दे। खिलाफन लिशाफई रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के, लहुल एतबारु बिस्सगीरती, कि इमाम शाफी रहमहुल्ला की दलील जो है वो सगीरा पर कियास करना है। भाई पहले इमाम शाफी रहमहुल्ला का मजहब समझ लो अच्छी तरह। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नाबालिग बेटा और नाबालिग बेटी इन पर बाप को विलायत इजबार हासिल होती है। तवज्जो से सुन लो, इन पर बाप को विलायत इजबार हासिल होती है, जहां चाहे निकाह इनका वो करवा सकता है। लेकिन इल्लत क्या है? तो कहते हैं जो लड़का है उसके अंदर इल्लत सिगर है कि वो छोटा है ना, बालिग है। जब वो बालिग हो जाएगा अब बाप को विलायत इजबार उस पर हासिल नहीं, उसकी इजाजत के बगैर जबरदस्ती बाप कहीं निकाह नहीं करवा सकता। किसमें? सगीर में। तो सगीर में इल्लत क्या है विलायत इजबार की? सिगर, नाबालिग होना, छोटा होना। और जब बालिग हो गया तो यह इल्लत खत्म हो गई, लिहाजा विलायत इजबार भी हासिल नहीं। जबकि लड़की के अंदर वो फरमाते हैं कि बाप को विलायत इजबार होती है बाकेरा होने की वजह से, सगीरा जो है उस पर भी बाप को विलायत इजबार हासिल है, लेकिन उसके सगीरा और नाबालिगा होने की वजह से ये विलायत नहीं है, बल्कि उसके बाकेरा होने की वजह से है, उसके बाकेरा होने की वजह से है। और जब ये लड़की बालिग हो गई तो ये इल्लत अभी भी मौजूद है, अभी भी ये बाकेरा है, तो लिहाजा अभी भी बाप को विलायत इजबार हासिल है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़की चाहे सगीरा हो चाहे बालिगा हो, जब वो बाकेरा है तो बाप को विलायत इजबार हासिल होगी। तो वो सिगर का एतबार नहीं करते बल्कि बाकेरा होने का एतबार करते हैं कि यह इल्लत है। लड़के में तो सिगर इल्लत है लेकिन लड़की में बकारत इल्लत है, लड़की में बकारत जो है उस पर विलायत इजबार की इल्लत है। बात समझ में आ गई? इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह चूंकि एक अजीम चीज है, सारी जिंदगी का एक मामला है, लिहाजा निकाह में तजर्बाकार होना जरूरी है। और ये तो बाकेरा है, गैर तजर्बाकार है, इसको तो निकाह का पता ही नहीं है, लिहाजा इस पर वली को विलायत इजबार हासिल है। निकाह क्या है? अजीम चीज है, उसके लिए इंसान को तजर्बाकार होना चाहिए। निकाह के बड़े मकासिद होते हैं भाई, दो दिन की बात नहीं है, सारी जिंदगी गुजारनी है, लिहाजा इंसान को तजर्बाकार होना चाहिए। और बाकेरा, बाकेरा इसको तो मर्द का तजर्बा ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है निकाह वगैरह का, तो लिहाजा इसको तजर्बा नहीं, लिहाजा इसको इख्तियार भी नहीं होगा, वली इसका जहां चाहे निकाह करवा सकता है। और यह बाकेरा होना, जैसे सगीरा के अंदर बाकेरा होने की इल्लत मौजूद है, जब बालिगा हो गई फिर भी क्या है, फिर भी बाकेरा है, मालूम है इसको अभी भी निकाह का कोई तजर्बा नहीं, लिहाजा इस पर भी बाप को विलायत इजबार हासिल है, जहां चाहे निकाह वो इनका निकाह करवा सकता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़के के अंदर विलायत इजबार हासिल होती है सिगर की वजह से, और लड़की के अंदर विलायत इजबार हासिल होती है बकारत की वजह से, बाकेरा होने की वजह से। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, कहते हैं खिलाफ अली शाफी रहमतुल्लाह बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के, भाई पीछे जिक्र हुआ ना, हमारे नजदीक जो बाकेरा बालिगा है तो उस पर बाप को विलायत इजबार हासिल नहीं, जो भी वली है उसको विलायत इजबार हासिल नहीं। लेकिन खिलाफ अली शाफी रहमतुल्लाह बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के लहूल एतबारू भी सगीरती, उनकी दलील जो है सगीरा पर कियास करना है। इधर देखिए, वो सगीरा पर कियास करते हैं, ये देखो ये बाकेरा है, इसमें दो सूरतें हैं, एक ये कि एक सगीरा होगी और एक बालिगा होगी, तो वो जो बाकेरा बालिगा है इसको बाकेरा सगीरा पे कियास करते हैं, और सगीरा जैसे निकाह के मामले में ना तजर्बाकार है, ये बालिगा भी क्या है निकाह के मामले में ना तजर्बाकार है, तो जैसे सगीरा पर विलायत इजबार हासिल थी, ये बालिगा पर भी क्या होगी, विलायत इजबार हासिल होगी। दलील समझ में आ गई? तो कहते हैं लहू लेतबार उबी सगीरत, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जो है वो सगीरा पर कियास करना है। वहां दाली अन्नहा जाहिला तुम भी अमरिन निकाही, और ये इसलिए क्योंकि ये जो बाकेरा होती है जाहिला तुम भी अमरिन निकाही, ये निकाह के मामले से लाइलम होती है, इसको निकाह का कोई पता नहीं है, ले आदमी तजरीबती तजर्बा न होने की वजह से, क्योंकि इसको निकाह का तजर्बा नहीं है। भाई उर्दू में तो हम तजर्बा पढ़ते हैं, अरबी में है तजरीबतुन तफइलतुन, आपने पढ़ा है नाकिस लफीफ और महमूजुल्लाम से बाब तफ़ईल का मस्दर तफ़ईलतुन वजन पर आता है, सम्मा युसम्मी तस्मियातन, देखो तफ़ईलतन, तो ये नाकिस है लफीफ है और महमूजुल्लाम, باب تفعیل سے ان کا مصدر تفعیلتن وزن پر آتا ہے اور باقی جگہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. تو یہاں دیکھو جرب یجربو تجربتن, یہ نہ تو ناقص ہے نہ یہ لفیف ہے نہ یہ محموز اللام ہے, لیکن اس کے اندر بھی تفعیلتن وزن پر آیا. تو ان ابواب میں, ان میں تو قانون ہے, اور یہاں عرب کے استعمال کو دیکھیں گے کہ کہاں وہ یہ مصدر لاتے ہیں اور کہاں نہیں لاتے. بھائی آگے دیکھیے, وَلِهَذَا يَقْبِزُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا, اور اسی لیے تو باپ قبضہ کر سکتا ہے صَدَاقَهَا اس بالغہ بیٹی کے مہر پر, بِغَيْرِ أَمْرِهَا اس کے حکم کے بغیر ہی. صداق مہر کو کہتے ہیں, صداق کسے کہتے ہیں؟ مہر کو. اب دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باقیرہ بالغہ بیٹی پر ولایت اجبار حاصل ہے, جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے, اور نیز اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے. باپ نے نکاح کروا دیا, ابھی رخصتی نہیں کی, نکاح کرواتے ہی خاوند کو کہتا ہے لاؤ بھائی مہر ہمارے حوالے کر دو. دیکھو باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی, بیٹی کے حکم کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر رہا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ باپ کو باقیرہ بالغہ پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا حرۃن فلا یکون للغیر علیہا ولایت الاجباری, کہ یہ جو عاقلہ بالغہ ہے یہ آزاد ہے, فلا یکون للغیر علیہا ولایت الاجباری, تو کسی اور کو اس کے اوپر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی کہ جبرن اس کو جہاں چاہے نکاح کروا دے. اور باقی والولایت علی الصغیرۃ لقصور عقلہا, امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو کیا فرمایا تھا کہ صغیرہ پر ولایت حاصل ہوتی ہے باپ کو, کیوں حاصل ہوتی ہے؟ کہ اس کو نکاح کا تجربہ نہیں ہے بھائی, یعنی باقیرہ ہے, باقیرہ ہے نا, جب باقیرہ ہے تو معلوم ہو اس کو نکاح کا تجربہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں, باقیرہ ہونا علت نہیں ہے, تجربہ نہ ہونا علت نہیں ہے, بلکہ اس کی علت صغر ہے کہ نابالغ ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے پوری طرح بھی, اس لیے صغیرہ پر باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے, اس کے صغیرہ ہونے کی وجہ سے, باقیرہ ہونے کی وجہ سے نہیں. بھائی یہ مانا ہے بل ولایت علی الصغیرۃ لقصور عقلہا, اور صغیرہ پر ولایت جو ہوتی ہے لقصور عقلہا اس کی عقل میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. قصور کا معنی کمی. وقد کمل بالبلوغ, اور تحقیق بالغ ہونے سے عقل کامل ہو گئی. بھئی دلیل کیا ہے کہ بالغ ہونے سے عقل کامل ہو جاتی ہے؟ دلیل بھی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں بھی دلیل توجہ الخطاب, اس دلیل سے کہ خطاب اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے, یعنی اللہ کے احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. وہ جیسے ہی بالغہ ہوئی اس پر نمازیں بھی فرض ہو گئیں, اس پر روزے بھی فرض ہو گئے, اگر وہ استطاعت والی ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا, اور اگر مال والی ہے تو زکات بھی آئے گی سال پر. تو دیکھو یہ شرعی احکام اس کی طرح متوجہ ہو گئے, شرعی احکام اس کی طرح متوجہ ہو گئے, معلوم ہوا اس کی عقل کامل ہے. اگر عقل کامل نہ ہوتی تو پھر شرعی احکام تو اس کی طرح متوجہ ہی نہ ہوتے. بھائی تو کہتے ہیں وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجہ الخطاب, اور تحقیق اس کی عقل جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے بالغ ہونے کی وجہ سے, بدلیل توجہ الخطاب, خطاب کے متوجہ ہونے کی دلیل کی وجہ سے. یاد رکھیے یہ بدلیل توجہ الخطاب یہ اضافت بیانی ہے, یہ اضافت بیان. یاد رکھو مضاف اور مضاف الیہ غیر ہوتے ہیں. غلام زیدین, غلام مضاف, زیدین مضاف الیہ, یہ دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں. غلام کی ذات اور ہے, زید کی ذات اور ہے. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی ذات الگ الگ ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ اسی مضاف کا بیان کرتا ہے, یعنی اسی سے ابہام کو دور کر دیتا ہے. تو اس وقت پھر مضاف اور مضاف الیہ غیر نہیں ہوتے, دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر وقد کمل بالبلوغ, کہ بالغ ہونے سے اس کی عقل کامل ہو گئی, بدلیل, ایک دلیل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھئی یہاں اضافت ہے لیکن میں ذرا اضافت کو توڑ رہا ہوں. بدلیل, کس کی وجہ سے؟ ایک دلیل کی وجہ سے. بھئی وہ کیا دلیل ہے؟ توجہ الخطابی. وہ کیا ہے؟ خطاب کا متوجہ ہونا. تو خطاب کا متوجہ ہونا ہی تو دلیل ہے. تو عبارت میں کیا ہے؟ بدلیل توجہ الخطابی, دلیل مضاف ہے اور توجہ الخطاب مضاف الیہ. تو معلوم ہو یہ توجہ الخطاب اسی دلیل کا بیان کر رہا ہے, کہ وہ دلیل کون سی ہے؟ توجہ خطاب ہے، خطاب کا متوجہ ہونا ہے، تو یہ اضافت بیانی ہے. اضافت بیانی کی علامت یہ ہے کہ آپ مضاف کو مبتدا بنا دیں اور مضاف الیہ کو خبر بنا دیں تو بات بالکل صحیح رہے گی، اس میں خرابی نہیں آئے گی. جیسے یہاں پر مضاف کیا ہے؟ دلیل. اس کو بناؤ مبتدا، اس پر الف لام لے آؤ، معرفہ کر دو. اور توجہ الخطاب اس کو خبر بنا دو. الدلیل توجہ الخطاب، اس کی دلیل جو ہے توجہ الخطاب، خطاب کا متوجہ ہونا ہے. تو جب بھی اضافت بیانی ہو تو وہاں پر آپ دونوں کو مضاف اور مضاف الیہ کو مبتدا خبر بنائیں گے تو بات صحیح رہے گی، اور اگر اضافت بیانی نہ ہوئی تو پھر آپ ان کو مبتدا خبر نہیں بنا سکتے. فصار کل غلامی، تو لہذا یہ عاقلہ بالغہ لڑکی بھی کل غلامی لڑکے جیسی ہو گئی. کس کی طرح ہو گئی؟ لڑکے جیسی ہو گئی. اور اے امام شافعی رحمہ اللہ، لڑکے میں تو آپ بھی مانتے ہیں، جب یہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہذا اب اس کا کوئی زبردستی نکاح نہیں کروا سکتا. تو یہاں لڑکی کی بھی عقل جب کامل ہو گئی، یہ لڑکے جیسی ہو گئی، جب لڑکے جیسی ہو گئی تو اب اس میں بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہونی چاہیے ولی کو. وقت تصرف فی المالی، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مال کے اندر تصرف ہوتا ہے، یعنی مال کے اندر تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لڑکی جب بالغہ ہو جائے، چاہے باقرہ کیوں نہ ہو، تو اس کو اپنے مال کے اندر تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کامل ہو گئی، اب وہ جہاں چاہے اپنے مال کو خرچ کرے. تو جب مال کے اندر اس کو تصرف کا حق مل رہا ہے کیونکہ عقل کامل ہو گئی، تو اپنی جان کے اندر بھی اس کو تصرف کا حق ملنا چاہیے کیونکہ اس کی عقل کیا ہو گئی ہے؟ کامل ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. فصار کل غلامی، تو یہ جو عاقلہ بالغہ آزاد عورت ہے، کل غلامی یہ لڑکے کی طرح ہو گئی، جیسے اس میں عقل کامل ہوتی ہے تو اس کو تصرف مل جاتا ہے. وقت تصرف فی المال، اور نیز یہ جو جان کے اندر تصرف تھا یہ مال کے اندر تصرف کی طرح ہو گیا، اور مال کے اندر تصرف تو بالغہ ہونے پر مل جاتا ہے، تو جان کے اندر بھی تصرف کا حق بالغہ ہونے پر ملنا چاہیے بھائی. وانما یملک الاب، باقی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی باقرہ پر باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے، اسی لیے تو باپ اس کے مہر پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے. اگر باپ کو ولایت اجبار نہ ہوتی تو باپ اس کے مہر پر اپنی مرضی سے قبضہ نہیں کر سکتا. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو باپ اس کے مہر پر قبضہ کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، یہاں دلالتن اجازت موجود ہوتی ہے، یہاں دلالتن اجازت موجود ہوتی ہے. وجہ یہ کہ باپ یہ مال لے کر اس کے ساتھ خود بھی کچھ مال ملاتا ہے اور پھر بیٹے کے لیے سامان وغیرہ اس میں تیار کرتا ہے تاکہ شادی کے رخصتی کے موقع پر بیٹی کو وہ سامان دے سکے. تو اس لیے باپ جو ہے بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں دلالتن اجازت موجود ہوتی ہے. چنانچہ اسی لیے اگر اس بیٹی نے روک دیا کہ نہیں آپ نے میرا مہر وصول نہیں کرنا، تو پھر باپ کے لیے بھی شرائن گنجائش نہیں ہے، وہ بیٹی کا مہر وصول نہیں کر سکتا. دیکھا، معلوم ہوا دلالتن اجازت تھی جب ہی قبضہ کر رہا تھا، اگر منع کر دے گی تو پھر وہ قبضہ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا باپ کو بیٹی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ صَدَاقِ بِرِضَائِهَا، اور باپ جو ہے مہر پر قبضے کا مالک ہے، بِرِضَائِهَا دلالتن، دلالتن اس کی رضامندی کی وجہ سے، کہ دلالتن اس کی رضامندی ہے، اس کی اجازت ہے. وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا، اور اسی لیے باپ مالک نہیں ہے مَعَ نَهْيِهَا اس کی نہی کے ساتھ، یعنی جب وہ عورت کیا کر دے، ماں نہیہا اس عاقلہ بالغہ کی نہیں کے ساتھ جو ہے باپ اس بات کا مالک نہیں ہے کہ وہ اس کے مہر پر قبضہ کر لے. چلیے بس کریں، بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.